नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।